सौरभ जी ने झलक को गले लगाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, ऑल द बेस्ट बेटा। झलक मुस्कुरा दी और बोली, डोंट वरी पापा, सारा काम खत्म करके मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। सौरभ जी भी मुस्कुरा दिए थे। वहीं आरव जी ने भी आगे बढ़कर अपने पापा, स्नेहा जी, रोहन और साथ ही साथ सौरभ जी से विदा ली थी। उसके बाद वो लोग जल्दी से प्राइवेट जेट की ओर बढ़ गए थे और कुछ ही देर में सभी लोग वहां से रवाना हो गए थे। उन लोगों के जाने के बाद आरव जी ने झलक की ओर देखकर कहा, बेटा अब ये बताओ कि मुझे आगे क्या करना है और कैसे करना है। जैसा तुम कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। तब झलक ने रहस्यमयी अंदाज में आरव जी की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अभी वक्त नहीं आया है पापा, तब तक आप सिर्फ वेट कीजिए। फिलहाल तभी अनामिका भी जल्दी से तैयार होकर वहां आ गई थी। आते ही वो बोली, ये तीनों कहाँ रह गए अभी तक, क्यों नहीं आए? हमें मॉल के लिए निकलना है, बहुत लेट हो रहा है। अगर हम दोनों अकेले चले गए तो बाद में यही बोलेंगे कि हम उन्हें घूमने के लिए लेकर नहीं गए। अनामिका के चेहरे पर इस वक्त अलग ही खुशी थी, क्योंकि आज झलक ने आदित्य को अपने इतने करीब आने दिया था तो इसका मतलब साफ था कि अब इस रिश्ते पर कहीं ना कहीं मुहर लग चुकी थी। अनामिका अच्छी तरह जानती थी कि अगर झलक आदित्य को पसंद नहीं करती तो वो उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देती। लेकिन अब तो ये बात लगभग तय हो चुकी थी कि आदित्य राणा ही भविष्य में झलक का पति बनेगा, इसीलिए इस वक्त अनामिका खुशी खुशी आदित्य को छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। वहीं दूसरी ओर कबीर अभय को उसकी सारी बेवकूफ़ी भरी हरकतों के बारे में बता चुका था। तुझे पता भी है, जिस वक्त तू झलक भाभी के कमरे में घुसा था उस वक्त वहां आदित्य भैया भी मौजूद थे। दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट चल रहा था, इसीलिए आदित्य भैया तुझे गुस्से से देख रहे हैं। ये सुनकर अभय का मुंह खुला का खुला रह गया था। उधर आदित्य अपने दादाजी की कॉल अटेंड कर रहा था। जैसे ही वो अंदर आया उसने कबीर और अभय की सारी बातें सुन ली थी। उनकी बातें सुनकर आदित्य तुरंत कबीर को घूरते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों, तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? ये सुनकर दोनों सिर झुकाकर खड़े हो गए थे। लेकिन अगले ही पल कबीर खुद को रोक नहीं पाया और बोला, वाह आदित्य भैया, बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने कुछ किया ही नहीं हो। हमारे सामने तो बड़े ब्रह्मचारी बन रहे हैं, जबकि असली बाल ब्रह्मचारी तो मैं हूँ। जैसे ही कबीर ने ये कहा आदित्य को भी मन ही मन हंसी आ गई थी। लेकिन तभी अचानक नीचे से अनामिका की तेज आवाज सुनाई दी, जीजू जीजू। ये सुनते ही आदित्य पूरी तरह हैरान रह गया था, इसे क्या हो गया है? वहीं कबीर और अभय भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे थे। कबीर मुंह बनाकर बोला, ये लड़की बुरी तरह क्यों चिल्ला रही है? वैसे भी मुझे ये लड़की एक नंबर की आफत लगती है, जब देखो तब चिल्लाना शुरू कर देती है। पता नहीं इसके साथ क्या हुआ है, ऐसे चिल्ला रही है जैसे घर में डाकू घुसाए हूँ। अभय भी हंस पड़ा था। चलो जाकर देखते हैं आखिर मामला क्या है। ये बोलकर आदित्य, कबीर और अभय तीनों फटाफट नीचे जाने लगे थे। नीचे पहुंचते ही अनामिका आदित्य को देखते ही उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अच्छा बताइए तो सही, आप ठीक है ना? इसके बाद उसने बिल्कुल फॉर्मल अंदाज में आदित्य को हल्का सा हक किया और बोली, सो स्वीट जीजू, आपने मेरी दीदी का इतना ख्याल रखा, लेकिन फिलहाल हमें शॉपिंग के लिए देर हो रही है और आप कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे थे, इसीलिए मुझे आपको इस तरह बुलाना पड़ा। वहीं आदित्य के पीछे पीछे कबीर और अभय भी दौड़ते हुए वहां पहुंचे थे और दोनों हाँफ रहे थे। कबीर गुस्से से अनामिका को देखते हुए बोला, इतना बड़ा ड्रामा नहीं कर सकती थी क्या? पता है अगर हमें कुछ हो जाता तो? हम तो ऐसे भागे हैं जैसे फ्री फायर का फाइनल मैच शुरू होने वाला हो। जैसे ही कबीर ने उसे डांटा अनामिका तुरंत मुंह बनाकर बोली, तुम्हें हार्ट अटैक आई या कुछ और हो जाए मुझे क्या? सुबह से तुम लोगों की वजह से मैं बिल्कुल भी अपना प्लान फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। फिर उसने हाथ बांधते हुए कहा, ठीक है हम गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं, केवल 2 मिनट है तुम्हारे पास, फटाफट आ जाना वरना हम लोग चले जाएंगे। फिर उसने मुस्कुराकर आदित्य की ओर देखा और बोली, और जीजू आप मेरे साथ चलिए। ये बोलकर वो अभय और कबीर को शौक में छोड़ते हुए आदित्य का हाथ पकड़कर सीधा बाहर ले गई थी। वहीं कबीर गुस्से से अभय की तरफ देखकर बोला, देखना किसी दिन मैं इस लड़की के सारे दांत तोड़ दूंगा, बहुत ज्यादा बोलती है ये। जैसे ही कबीर ने ये कहा अभय तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन मुझे तो ये बहुत ज्यादा क्यूट लगती है, मन करता है कि ये इसी तरह बोलती रहे और मैं इसकी सारी बातें सुनता रहूं। वहीं दूसरी ओर खुराना मेंशन में हल्दी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। रणविजय सिद्धार्थ को तैयार करके खुराना मेंशन लेकर आ गया था। वहां पहुंचने के बाद दादी ने आकांक्षा को थोड़े गंभीर अंदाज से देखा, हालांकि अपने पोते की खुशी के लिए उन्होंने चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखी थी। फिर वो आकांक्षा की ओर देखते हुए बोली, देखो बेटा हमें नहीं पता कि समाज में तुम लोगों को लेकर क्या क्या बातें चल रही हैं, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी को भी हम पर या हमारे परिवार पर उंगली उठाने का मौका मिले। उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, तुम्हारी माँ अभी तक पूरे समाज के सामने पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं हुई है, इसीलिए ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिसकी वजह से हमें एक बार फिर समाज के सामने जवाब देना पड़े। फिलहाल तुम लोग जाओ और जाकर शॉपिंग करो, हल्दी मेहंदी और शादी की हर एक चीज की शॉपिंग कर लेना, क्योंकि हल्दी लगने के बाद तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, ये हमारे यहाँ का शगुन होता है। और फिर आज हल्दी और मेहंदी का फंक्शन है, उसके बाद कल तुम्हारी और सिद्धार्थ की शादी हो जाएगी, क्योंकि अब हम इस मामले को ज्यादा दिन तक नहीं खींचना चाहते। पता नहीं क्यों लेकिन हमें बार बार ऐसा लग रहा है कि हमें फटाफट सारे ड्रामे को खत्म करना होगा
और जितनी जल्दी ये शादी हो जाएगी उतनी ही जल्दी झलक का असली मकसद भी हमारे सामने आ जाएगा। इसीलिए अब हम और ज्यादा देर नहीं करना चाहते, समझ गई ना हमारी बात? दादी ने पूरी सख्ती और तेज आवाज में आकांक्षा से कहा था। आकांक्षा बाहर से शांत खड़ी थी लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह खौल रही थी। एक बार बढ़िया से तेरे घर की बहू बन जाऊं फिर तुझे बताऊंगी कि अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार करने का क्या अंजाम होता है। लेकिन फिलहाल उसने अपने चेहरे पर मीठी मुस्कान सजाते हुए कहा, दादी देखना बहुत जल्दी मेरी माँ के बारे में जो भी उल्टी सीधी बातें पूरे समाज में चल रही हैं वो भी पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। बस मुझे इस शादी का इंतजार है, उसके बाद देखना सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। फिर वो थोड़ी देर रुककर बोली, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी सौतेली बहन झलक यहाँ आकर किसी न किसी तरीके से शादी रोकने की जरूर कोशिश करेगी। तभी सिद्धार्थ रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, उसे करनी भी चाहिए। उसकी बात सुनकर दादी तुरंत बोली, हम उसे यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। हमने पहले ही काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर रखा हुआ है। वो इस शादी, मेहंदी या हल्दी के किसी भी फंक्शन को खराब करने के लिए यहाँ बिल्कुल नहीं आएगी। सुन रही हो ना मेरी बात? वो लड़की हमारे घर के हर एक फंक्शन से दूर रहेगी। जैसे ही दादी ने ये कहा, सिद्धार्थ तुरंत रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन उसके बिना मजा क्या आएगा दादी? उसे हल्दी में भी आना होगा और मेहंदी में भी आना होगा। एक पल के लिए सिद्धार्थ की बातें सुनकर आकांक्षा चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मन ही मन वो सोचने लगी,
अगर झलक यहाँ आकर मेरी खुशियाँ नहीं देखेगी और मुझे सिद्धार्थ की पत्नी बनते हुए नहीं देखेगी तो फिर मज़ा कैसे आएगा? उसने इतना बड़ा ड्रामा किया था, पूरे समाज के सामने उसने सिद्धार्थ को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, मुझे उससे दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसकी सारी चालें पूरी तरह नाकाम हो चुकी हैं, तो भला उसकी शक्ल देखे बिना मुझे क्या मज़ा आएगा? ये सोचकर आकांक्षा सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी। तभी दादी फिर बोली, क्या आप बकवास कर रहे हो तुम? तुम जानते नहीं हो कि वो लड़की कितनी ज़्यादा खतरनाक बन चुकी है। ऊपर से मल्होत्रा परिवार का साथ उसे मिल रहा है और साथ ही साथ आदित्य राणा भी उसके साथ खड़ा है। ऐसे में वो लड़की पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। उसे कमज़ोर समझना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। वो हमारे किसी भी फंक्शन में नहीं आएगी। अगर वो यहाँ आएगी तो ज़रूर कोई ना कोई तमाशा खड़ा करेगी। तभी रणविजय ने गहरी सांस ली और दादी को कंधे से पकड़कर दोबारा बैठाते हुए कहा, दादी आप शांत हो जाइए, झलक यहाँ आएगी या नहीं आएगी इसका फ़ैसला हम बाद में भी कर सकते हैं, इस वक्त आपकी सेहत का ठीक रहना ज़्यादा ज़रूरी है। दादी चुप हो गई। वहीं सिद्धार्थ गहरी नज़रों से आकांक्षा को देखने लगा था। दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। सिद्धार्थ की आंखों का इशारा समझते ही आकांक्षा तुरंत बोली, दादी मेरे हिसाब से उसका यहाँ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ हमें बर्बाद करने के लिए आई है। वो कभी भी अपनी आंखों से ये नहीं देख सकती कि मेरी और सिद्धार्थ खुराना की शादी हो जाए। उसने जो कुछ भी किया था वो सिर्फ हमारी शादी रोकने के लिए किया था, इसीलिए उसका यहाँ आना ज़रूरी है। जिस तरह उसने खुराना परिवार और ओबेरॉय परिवार की पूरे समाज के सामने बेइज्जती की थी, हम लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाए थे और हमें सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश की थी, तो अब जब उसका सबसे बड़ा सपना टूटेगा और वो देखेगी कि सिद्धार्थ की पत्नी मैं बन रही हूँ, तब उसे अपनी असली हार का एहसास होगा। इसीलिए दादी आप उसे यहाँ आने दीजिए, और वैसे भी अगर उसने यहाँ आकर किसी तरह का कोई हंगामा करने की कोशिश की तो हम उसे तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स के जरिए बाहर निकलवा देंगे। उसके बाद ना मल्होत्रा परिवार और ना ही राणा परिवार उसकी कोई मदद कर पाएगा, इसीलिए दादी आप उसे यहाँ आने दीजिए। आकांक्षा ने बड़ी चालाकी और समझदारी का दिखावा करते हुए ये बात कही थी। असल में वो चाहती थी कि दादी खुद झलक को इन्विटेशन दे, ताकि अगर बाद में कोई बवाल हो तो उसकी तरफ किसी का शक न जाए। दादी कुछ देर तक सोचती रहीं, फिर अगले ही पल बोली, ठीक है अगर तुम लोगों को यही सही लग रहा है तो वही करो, लेकिन हम अभी भी तुम लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। हमारा अनुभव बहुत बड़ा है और हम लोगों को पहचानना जानते हैं। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बन चुकी है। पता नहीं क्यों लेकिन हमें बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकती है। तभी रणविजय ने गंभीर स्वर में कहा, दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, झलक भले ही आज शाम यहाँ आए या ना आए लेकिन हमें पूरी तरह सतर्क रहना होगा। वो कोई ना कोई चाल ज़रूर चलेगी और उसके हर कदम पर हमें नज़र रखनी होगी। वैसे भी अगर उसने शादी में आकर किसी तरह का ड्रामा करने की कोशिश की तो समझ जाना कि वो अभी तक तुम्हारे प्रति पूरी तरह ऑब्सेस्ड है। वो प्यार नहीं है, वो जुनून है, और जुनून में इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। ये कहते हुए रणविजय की नज़रें सीधे सिद्धार्थ पर टिक गई थीं, जबकि कमरे में मौजूद बाकी सभी लोग गहरी सोच में डूब गए थे।